दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ हिंदी कहानी पॉडकास्ट की मूल रचना कहानी मौत। सुबह के 8 बज रहे हैं। गाजियाबाद टाइम्स के सीनियर रिपोर्टर तपन बैनर्जी अपने पुश्तैनी बंगलों की लॉन में बैठे रोज की तरह अखबार पढ़ रहे हैं। अखबार में छपी एक खबर को पढ़कर वह किसी गहरी सोच में डूब जाते हैं। कुछ देर बाद वो अखबार को सामने वाली कुर्सी पर फेंक कर उठ जाते हैं और ऑफिस के लिए तैयार होने बंगलों के अंदर चल देते हैं। सुबह के 9:30 बजे एमजी रोड पर मिस्टर तपन बैनर्जी रोज की तरह इस सेक्टर 12 की ट्रैफिक लाइट का रेड से ग्रीन होने का इंतजार अपनी मारुति एल्टो में कर रहे हैं। सुबह की खबर ने उन्हें अब भी बेचैन कर रखा है। उनकी गाड़ी के ठीक सामने एक मंद बुद्धि लड़का खड़ा है, जिसकी उम्र 34-35 साल के लगभग की होगी। वो कभी आसमान की तरफ देखकर अपनी घुड़घुड़ी सी आवाज में कुछ कहता रहता है, फिर जोर जोर से हाथ हिलाता है। न जाने क्यों तपन की नजर उस मंद बुद्धि लड़के पर टिक गई और वो उसे तब तक देखता रहा जब तक वह सड़क के दूसरी तरफ न चला गया। तपन अपने अखबार की दफ्तर की तरफ निकल पड़ा। अगले दिन राजनगर पुलिस स्टेशन में,
सर, ये रही मेरे लड़के की तस्वीर। वो बीमार रहता है सर। ट्रीटमेंट के लिए मैं उसे हॉस्पिटल ले गया था। मैं उसे हमेशा अपने पास ही रखता हूँ। मैं जब दवाई ले रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया।
ये कल दोपहर की बात है?
जी सर, आप उसे ढूंढ दीजिए सर। वो खुद मैनेज नहीं कर सकता है सर।
क्यों, हुआ क्या है उसे?
वो थोड़ा मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अकेले कुछ कर भी नहीं सकता। उसको ढूंढ दीजिए सर।
विकास नाम है इसका?
जी सर, विकास दुबे, लगभग 35 साल का है।
रात के 11:30 बजे एलिवेटेड रोड पर, सर्दियों की रात, सुनसान पड़े एलिवेटेड रोड पर एक बुलेट मोटरसाइकिल तेज रफ्तार से दौड़े जा रही है। तभी बाइक को ओवरटेक कर एक कार बाइक के सामने आ जाती है। बाइक पर सवार हरदेव बाइक को बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल करते हुए रोकता है। इतने में कार से 3 लोग बाहर आते हैं।
क्या है भाई, कौन हो तुम?
बोला था ना तेरे को, ये पत्रकारिता के चक्कर में मत पड़ो। बहुत हीरो बनने का शौक चढ़ा है तुझे। तू अपने इस रिपोर्टिंग से सबको एक्सपोज करेगा और हम तेरी आरती उतारेंगे।
देखो देखो, मुझे जो करना है सो करना है। मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाला नहीं। चलो हटो, अब रास्ता छोड़ो।
हाँ हाँ, क्यों नहीं, रास्ता तो हम छोड़ेंगे ही, लेकिन उससे पहले तू दुनिया छोड़ेगा।
अगले दिन तपन बैनर्जी के बंगले पर रोज की तरह वॉक से लौटकर अखबार पढ़ने बैठे तपन बैनर्जी अखबार पढ़ते पढ़ते बेचैन हो जाते हैं।
ये रही आपकी चाय।
गरिमा, राजनगर टाइम्स के पत्रकार हरदेव का मर्डर हो गया।
क्या?
तभी तपन बैनर्जी का मोबाइल बज उठता है। हेलो,
क्यों बे तपन, खबर पढ़ी कि नहीं?
कौन कौन, हेलो हेलो, कौन कौन बात कर रहा?
उस हरदेव की तरह तू भी बड़ा उछल रहा है। ये लास्ट वार्निंग है। ये जो तेरी पत्रकार गिरी है वो बंद कर, आज के आज, अभी के अभी।
ऐ, हिम्मत है तो अपना चेहरा दिखा मुझे। ये फोन पे क्या धमका रहा है, सामने आकर बात करना।
पत्रकार तपन बनर्जी, अगर मैंने चेहरा दिखा दिया तो तुम जिंदगी भर अपनी फैमिली का चेहरा नहीं देख पाओगे।
ऐ, सुन तू। हेलो हेलो हेलो।
तपन, तपन फिर से धमकी।
कुछ नहीं है ये।
तपन, मुझे लगता है हमें पुलिस में कंप्लेन कर देनी चाहिए। तपन, हमें इस कॉल को इग्नोर नहीं करना चाहिए। चलो चलो पुलिस स्टेशन चले।
गरिमा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। पर हाँ, हमें रिस्क भी नहीं लेना चाहिए। अगले दिन राजनगर पुलिस स्टेशन में, देखो सर, हमको जिस नंबर से धमकी मिल रहा है उसको तो हम पहचानता तो नहीं है। हम जब भी उस पे कॉल बैक किया, उधर से कोई फोन उठाता ही नहीं है।
ठीक है मिस्टर तपन, आप वो नंबर दयाल को लिखवा दे, हम उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं।
सर, हमको तो ढूंढना पड़ेगा, बहुत टाइम से ही हमको कॉल कर रहा है।
ठीक है, तो आप कॉल लिस्ट में से वो नंबर ढूंढ लीजिए, उसके बाद हम ट्रैकिंग पर लगाएंगे।
सर, राजनगर टाइम्स के रिपोर्टर हरदेव का मर्डर कल ही हुआ है और आज सुबह ये धमकी हमें दोबारा आई। सर, हमारी जान को खतरा है, आप समझ रहे हैं? हमारे दो बच्चे भी हैं सर।
गरिमा जी, तपन जी, आप लोगों को कुछ तो आइडिया होगा कि कौन लोग हैं वो। सर, हमने अपने अखबार गाजियाबाद टाइम्स में कुछ लोगों के करतूतों के खिलाफ रिपोर्ट छापा था, इसी कारण उनको बहुत तकलीफ हो रही होगी। सर, कौन लोग हैं मिस्टर तपन बनर्जी, नाम बताइए। एक तो वो जाकिर शेख है, वो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेता है। मोहन प्रधान, जाकिर शेख का बिजनेस पार्टनर। और तीसरा पार्टनर है वो कमाल अख्तर। इन तीनों का एक ठो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट क्वार्टर, फ्लाईओवर, सबका ठेका इनको मिलता है। सारा डील टेबल के नीचे नीचे फाइनल होता है। ब्लैक मनी तो बोरियों में भोर भोर कर आता है। मैंने अपने खोजी रिपोर्टिंग से इन तीनों के कई भांडे फोड़े। ऐसे लोगों का अगर आपसे बड़ा नुकसान हो रहा हो तो भी ये आपको डायरेक्ट धमकी नहीं देंगे मिस्टर तपन। हाँ, हम जानता, किराए का गुंडा से काम करवाएंगे और क्या।
फिक्र मत कीजिए, एक बार ये किराए के टट्टू हाथ लग जाए तो असली गुनहगार कौन है ये भी पता चल जाएगा।
सर, हमको हमारा फिक्र नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से हमारा फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो। क्या मेरी फैमिली को पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगा? आप अर्जी दे दीजिए, डायरेक्टरेट से इसकी परमिशन लेनी होगी। और परमिशन मिलने तक जी, मैं तो कहूंगा कि आप अपना नंबर बदल दें।
अगले दिन राजनगर टाइम्स के दफ्तर में, हे तपन, सब सही है ना? हाँ हाँ यार गौरव, सब ठीक है। देख, झूठ मत बोल, ये तेरे चेहरे पे साफ लिखा है कि तू टेंशन में जी रहा है। झूठ मत बोल, बोल, सच बोल रहा हूँ ना मैं? नहीं यार, देख ऐसी कोई बात तो नहीं है। अरे ये तो रोज का है दोस्त, टेंशन जिंदगी का हिस्सा है, खुद जिंदगी नहीं। और तुम्हारी जिंदगी भी बिल्कुल सही है तपन, बस सोचने का नजरिया बदल लो, ख्याल रख।
रात के 9 बजे तपन बनर्जी के पुस्तैनी बंगले पर।
अरुण, संजय, चलो डिनर कर लो। मम्मी प्लीज, पापा के साथ खाएंगे। मैं भी नहीं खाऊंगा, हमें पापा के साथ बहुत सारी बातें करनी है, पापा को आने दो प्लीज प्लीज प्लीज। फोन तो उठा लो तपन।
रात के 10 बजने वाले हैं, दोनों बच्चे डिनर खत्म कर सोने चले गए। इधर गरिमा तपन का इंतजार करती रही, बीच बीच में वो उसका फोन भी ट्राई करती रही।
तपन तपन तपन, ये क्या हो गया? ये चोट कैसे लगी? तुम्हारे कपड़े क्यों फटे हैं? तपन तपन, ये क्या हुआ? बोलो तपन।
वो दफ्तर से लौटते वक्त अर्थला चौक के पास तीनटा लोग अपना बाइक हमरा कार के आगे लगा दी और बिना वजह हाथापाई पर उतर आए। सालों ने मार कर अधमला कर दिया और जाते जाते धमका गए हैं कि मैं ये अपनी रिपोर्टर गिरी छोड़ दूँ। वो कह रहे थे जैसे हमारा रिपोर्टिंग की वजह से उनके मालिक की जिंदगी में आग लगी है, वैसे ही मुझे भी जलाकर राख कर देंगे।
तपन तपन, मुझे बहुत डर लग रहा।
डर डर तो अब मुझे भी लग रहा है गरीबा, लेकिन इतना भी नहीं कि इन बुजदिलों की धमकियों से मैं डर कर पीछे हट जाऊं।
हाँ,
लेकिन अब वो जानते नहीं ना, अब मैं पीछे हटूंगा ना मैं झुकूंगा, जो करना है कर ले। वो
खतरे की चिंगारी अब हमले की आग बन रही थी और इन आग की लपटों ने मौत का नाच शुरू कर दिया था। दो दिनों के बाद रात के 11:30 बजे राजनगर पुलिस स्टेशन में,
सर कंट्रोल रूम से एक कॉल आया है, एलिवेटेड रोड पर एक गाड़ी जल रही है, चलो।
कामत सर, आग पूरी तरह से बुझा दी गई है, अंदर एक लाश पड़ी है पूरी तरह से जली हुई।
किसका है मालूम चला? कोई आइडेंटिटी वगैरह?
ये देख रहे हैं सर, एक आधी जली हुई जर्नलिस्ट आईडी कार्ड है सर, इस पर एक इमरजेंसी कांटेक्ट का नंबर है।
दयाल कॉल करो उस नंबर पर।
हेलो, क्या ये गरिमा बनर्जी का नंबर है? गरिमा जी बोल रही हैं?
जी मैं गरिमा बनर्जी बोल रही हूँ।
क्या ये गाड़ी नंबर UP16XYZ3612 ये आपके किसी जान पहचान वाले की गाड़ी है?
ये हमारी गाड़ी, मेरा मतलब है मेरे पति तपन बनर्जी की गाड़ी है। सब ठीक तो है ना? कहाँ है वो?
मैडम आप एक काम करें, आप फौरन राजनगर पुलिस स्टेशन आ जाइए।
पर हुआ क्या है? कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या?
मैडम आप जरा जल्दी कीजिए, आप फौरन राजनगर पुलिस स्टेशन आ जाइए।
लगभग 1.5 घंटे बाद गरिमा बनर्जी अपने भाई तमल को लेकर राजनगर पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं।
प्लीज इंस्पेक्टर साहब, बताइए ना कहाँ है मेरे पति? आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब?
सर तपन जी जाजी कहाँ है? आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं सर? कहाँ ले जा रहे हैं आप हमें?
आइए, ये लाश पूरी तरह से जल चुकी है, शिनाख्त करना मुश्किल हो रहा है। क्या ये सारी चीजें आपके हस्बैंड की है?
ये सब तो तपन का है।
कुछ देर बाद इंस्पेक्टर कामत के केबिन में, गरिमा जी कार पूरी तरह से जल गई है, गाड़ी के अंदर से हमें एक मोबाइल मिला है वो भी पूरी तरह से जली हुई हालत में। किसी आदमी ने कंट्रोल रूम में फोन किया था, आपके हस्बैंड के आइडेंटिटी कार्ड से हम आप तक पहुंचे।
हम आए थे आपके पास मदद मांगने, कहा था कि तपन की जान को खतरा है, अगर आप चाहते तो रोक सकते थे इस मर्डर को, पर आपने नहीं रोका।
गरिमा जी, जिसने भी ये घिनौनी हरकत की है हम उसे छोड़ेंगे नहीं।
आपने आपने छोड़ दिया इंस्पेक्टर, छोड़ दिया आपने। उन लोगों ने मार दिया मेरे पति को, मेरे पति को मार दिया उन लोगों ने।
अगले दिन तपन बनर्जी के मर्डर की खबर गाजियाबाद के हर अखबार के पहले पन्ने पर थी। लाखों लोगों के साथ यही खबर जाकिर मोहन और कमाल ने भी पढ़ी। दो दिनों के बाद राजनगर पुलिस स्टेशन में, देखिए गरिमा जी, हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, लेकिन वो तीनों कॉन्ट्रैक्टर जाकिर मोहन और कमाल अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। देखिए इस वक्त ये तीनों फरार हैं, लेकिन हमारा सर्च ऑपरेशन जारी है।
लेकिन वो मिलेंगे नहीं, क्योंकि जानबूझकर उन्हें फरारी का मौका दिया जा रहा है।
नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए हमारे पास ठोस सबूत होने चाहिए। हम ठोस सबूत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार सबूत हाथ आ गए तो सवाल किए जाएंगे उनसे।
फरार है तो सवाल कैसे करेंगे आप?
पकड़ेंगे, फिर सवाल करेंगे, और क्या।
हाँ, और फिर वो बड़ी आसानी से निकल जाएंगे, और फिर आप उनको और ईमानदार पत्रकारों को मारने के लिए छोड़ देंगे, जैसा कि तपन के साथ हुआ।
गरिमा जी, मेरी बात पर गौर करें। हम तपन बनर्जी के कातिलों को छोड़ेंगे नहीं। उन्हें पकड़ा जाएगा और जरूर पकड़ा जाएगा।
हाँ, हत्यारे तो किराए के किलर्स होंगे। अरे असली हत्यारे तक आप कभी पहुंचेंगे भी? बड़ी बड़ी मछलियां कभी छोटे छोटे जालों में फंसे हैं इंस्पेक्टर?
अगले दिन राजनगर के सभी समाचार पत्रों के रिपोर्टर्स का एक कैंडल मार्च जुलूस सेंट्रल हॉल तक निकला।
तपन बनर्जी अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें।
तपन बनर्जी अमर रहें, अमर रहें,
अमर रहें, अमर रहें।
जल्दी पकड़ो, जल्दी पकड़ो।
तपन के कातिलों को पकड़ो,
जल्दी पकड़ो, जल्दी पकड़ो।
दो दिनों के बाद जाकिर मोहन और कमाल अचानक राजनगर पुलिस स्टेशन पहुंच गए। उनके साथ उनका तेज तरार वकील भोसले भी मौजूद था।
ये रहे मेरे क्लाइंट के एंटी सेपरेटरी बेल ऑर्डर। हमने अभी आपके क्लाइंट से एक सवाल भी नहीं किए और आप इतनी सारी चालें चल गए। क्यों नहीं चलता? उस रिपोर्टर तपन बनर्जी की बीबी गरिमा ने मेरे क्लाइंट पे मर्डर का चार्ज ठोका है। मेरे क्लाइंट का दूर दूर तक इस केस से कोई वास्ता नहीं है।
क्या सच में नहीं है?
इंस्पेक्टर साहब, हम कॉन्ट्रैक्टर हैं। हाँ, उस तपन ने अखबार में रिपोर्टिंग करके हम तीनों के खिलाफ नाक में दम कर रखा था। और हाँ, सरकार का हर डिपार्टमेंट जानता है कि तपन बेवजह हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ा हुआ है। अब ऐसे में हम लोग क्या पागल हैं जो उसे मारने की प्लानिंग करेंगे?
और तपन बनर्जी ने जो अपने अखबार में तुम तीनों का भांडा फोड़ा है, उसका क्या?
हम उसे समझाते
या धमकाते?
सर, ये धमकाने वाली बात तपन की बीबी का वहम है।
तीन रात पहले तपन को रास्ते में रोककर धमकी दी गई कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसे जिंदा जला दिया जाएगा, उसकी लाश भी पहचान में नहीं आएगी। और ठीक वैसा ही हुआ। शाम के 6 बजे तपन बनर्जी के पुश्तैनी बंगले पर।
इंस्पेक्टर साहब, ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। जाकिर शेख, मोहन प्रधान और कमाल अख्तर ही मेरे पति के कातिल हैं।
गरिमा जी, हमने इन तीनों से अच्छी तरह से पूछताछ करी है, इनके फोन कॉल्स, इनके हर डिटेल्स को चेक किया है। अभी तक हमें एक भी ऐसा सुराग नहीं मिला जो इन तीनों को तपन बनर्जी के मर्डर से कनेक्ट करता हो।
मेरे पति के पास इनका काला चिट्ठा पड़ा है, क्या वो सबूत नहीं?
हमने वो सबूत भी चेक किए, बल्कि इन तीनों ने खुद माना है कि तपन बनर्जी से इन्हें प्रॉब्लम थी। वो नाराज थे तपन से, फिर भी उनका कहना है कि उन्होंने तपन बनर्जी की हत्या नहीं की है।
तो फिर कौन और क्यों करेगा सर? कोई सिरफिरा के तो नहीं करेगा ना सर? सर मैं कहती हूँ, इन तीनों ने ही मेरे पति तपन को मारा है, क्योंकि तपन इनका भांडा फोड़ने वाले थे।
अगले दिन सुबह के 9 बजे हैं, इंस्पेक्टर कामत हेड कांस्टेबल दयाल के साथ तपन बनर्जी के मर्डर स्पॉट पर पहुंचकर फॉरेंसिक एक्सपर्ट से जली हुई कार के बारे में पूछते हैं।
इंस्पेक्टर, हमने इस जली कार का एक एक पुर्जा चेक किया, वायर चेक किया, ये शॉर्ट सर्किट का केस नहीं है, आग बाहर से लगाई गई है।
आग लग गई या लगाई गई है?
लगाई गई है। देखिए, पूरी कार के बॉडी के ऊपर पेट्रोल छिड़का गया है, गाड़ी के चारों तरफ और जमीन पर हमें पेट्रोल के ट्रेसेस मिले हैं।
तपन बनर्जी कार के अंदर था, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि तपन बनर्जी को पहले मार दिया गया हो और फिर तपन की लाश और कार दोनों को जला दिया गया होगा?
इंस्पेक्टर, मैं इतना श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि गाड़ी की बॉडी के ऊपर पेट्रोल छिड़का गया है। विक्टिम कार के अंदर था और कार की खिड़कियां और दरवाजे बंद थे।
दयाल, अगर ऐसा था तो तपन गाड़ी में आग लगने से पहले ही मर चुका था या मार दिया गया था। उसका फोन भी गाड़ी के अंदर जली हुई हालत में मिली। अगर वो जिंदा होता तो किसी न किसी से फोन करके मदद मांगता कि गाड़ी में फंस गया हूँ, आकर निकाल लो। दयाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन तीनों कॉन्ट्रैक्टर को सामने लाकर असलियत को दबाया जा रहा हो?
सर, कोई पर्सनल मैटर भी हो सकता है।
पॉइंट दयाल, यह पत्रकारिता वाला एंगल हमें कहीं नहीं ले जा रहा है, तो तुम सबके पर्सनल प्रोफाइल चेक करो।
लगभग 1 सप्ताह बाद, दयाल, तपन बनर्जी वाले केस में कुछ मिला?
सर, तपन बनर्जी के ऑफिस में काम करने वाले सभी का बीमा पॉलिसी निकलवाया गया था, पूरे 85 लाख का, जिस पर अब उसकी वाइफ गरिमा और साला तमल दोनों क्लेम करने में लगे हुए हैं।
तो क्या दाल में कुछ झोल झाल लग रहा है क्या?
नहीं, झोल का तो नहीं पता सर, पर हाँ, तपन के ऑफिस में तपन का एक खास दोस्त है, नाम है गौरव, मैंने उसे थाने बुलवाया है सर, थोड़ी देर में गौरव यही होगा।
कुछ घंटे बाद राजनगर पुलिस स्टेशन में, जी हाँ सर, तपन की वाइफ गरिमा और तपन का साला तमल दोनों ने इंश्योरेंस क्लेम किया है, दरअसल पहला चेक भी मिल चुका है उन्हें।
गौरव, हमने सुना बड़े करीब थे तुम और तपन।
जी बिल्कुल सही सुना है आपने।
गौरव, हमें नहीं लगता कि तपन की मौत अखबार में सनसनीखेज रिपोर्टिंग की वजह से हुई है, शायद कोई पर्सनल वजह रही हो, हो सकता है ये मर्डर न होकर एक सुसाइड केस हो, आपको क्या लगता है?
तपन था तो काफी डिस्टर्ब।
किस बात को लेकर?
एक अफेयर को लेकर। यार गौरव, सच्चाई तो ये है कि मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ।
तपन, सच्चाई ये भी है कि तुम शादीशुदा हो, 2 बच्चे हैं। तपन, क्या गरिमा इस बारे में जानती है?
नहीं जानती, पर शायद जान जाएगी, क्योंकि
क्योंकि गरिमा को तपन के अफेयर के बारे में कैसे पता चला, बताइए मिस्टर गौरव।
क्योंकि तपन का अफेयर जिस औरत के साथ है वो तपन की पड़ोसन है, साधना, साधना वर्मा, बंगलो नंबर 17, वो भी तपन के गाजियाबाद टाइम्स में काम करती है।
तो मिस्टर गौरव, क्या गरिमा को पता था तपन के इस अफेयर के बारे में?
जी जी हाँ, पता था। उस बात को लेकर अक्सर दोनों में झगड़े होते थे, इसीलिए तपन का दिमाग हमेशा टेंस हुआ करता था।
मैंने कई बार समझाया उसे कि भूल जाए उस साधना को।
मिस्टर गौरव, क्या ये हो सकता है कि इन झंझटों से परेशान होकर खोजी पत्रकार तपन बनर्जी ने सुसाइड किया हो?
सर, मैं श्योरली तो नहीं कह सकता, पर तपन था काफी डिस्टर्ब।
देर शाम साधना के बंगलों पर।
जी कांस्टेबल दयाल, राजनगर पुलिस चौकी से, मिस साधना वर्मा यही रहती हैं?
सर, साधना मिसिंग है जी। वो एक हफ्ता पहले गई थी, तब से उसकी कोई खबर नहीं है। हम तो ढूंढ ढूंढ कर थक गए। हमने पुलिस कंप्लेन भी लिखवाई थी साहब,
लेकिन अचानक ऐसे कहाँ चली गई?
हमारे पड़ोसी तपन बनर्जी की मौत के बाद तो साधना बिटिया बहुत मायूस हो गई थी। उसने नौकरी से भी रिजाइन दे दिया था, किसी से कुछ नहीं बोलती थी, पूरा दिन बैठी रहती थी चुपचाप।
क्या आपको पता था कि साधना और तपन जी का अफेयर चल रहा था?
जी पता था।
आपको क्या लगता है, तपन बनर्जी ने सुसाइड किया होगा?
अब हजूर ये हम कैसे कह सकते हैं? उसकी मौत की खबर सुनने के बाद हम तो एकदम से सुन्न हो गए। हमें साधना बिटिया की बहुत चिंता सताने लगी। साधना तपन से बेहद प्यार करती थी और उसकी मौत के बाद से तो एकदम सी टूट सी गई और एक दिन घर से निकल गई। पता नहीं कहाँ गई होगी, किस हाल में होगी मेरी बेटी। साहब आप उसे ढूंढ निकालिए प्लीज।
दयाल, हमें इस केस की जड़ गहराई तक ढूंढना होगा। सबसे पहले हमें अब ये साधना वर्मा को ढूंढना होगा। दयाल, एक बार ये साधना वर्मा हमारे हाथ लग गई तो सारा भेद खुल जाएगा। अब साधना वर्मा ही हमें क्लियर करेगी कि तपन बनर्जी का मर्डर हुआ है या उसने सुसाइड किया है।
वैसे सर एक बात तो क्लियर है, एक अरसे से तपन बनर्जी और साधना वर्मा एक दूसरे के टच में थे।
लेकिन दयाल, तपन बनर्जी की मौत के दो दिन पहले से टच में नहीं थे, ना ही फोन कॉल्स पर, ना ही एसएमएस पर। और तपन बनर्जी की जिस दिन से मौत हुई है तब से साधना वर्मा का मोबाइल भी ऑफ है।
कामत सर, साधना के फादर का कहना था कि साधना काफी डिस्टर्ब थी, तपन बनर्जी की मौत के दो दिन पहले से इनके बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं था। नो कम्युनिकेशन, नो एसएमएस, नो कॉल्स, ऐसा क्यों हुआ होगा सर?
कुछ घंटों बाद इंस्पेक्टर कामत कांस्टेबल दयाल के साथ दो सिपाहियों को लेकर तपन बनर्जी के पुस्तैनी बंगले पर पहुंचे।
गरिमा जी, आपके अलावा और कौन जानता था कि आपके पति तपन बनर्जी का अफेयर आपकी नेबर साधना वर्मा के साथ चल रहा था?
आप तो ये बात जानती थी, फिर भी ये बात आपने हमें नहीं बताई। कोई तो वजह रही होगी जिसकी वजह से आपने ये बात हमसे छुपाई।
वजह ये है इंस्पेक्टर कि आप लोग कभी इस केस को सुसाइड तो कभी एक्सीडेंट बता रहे थे, जबकि सच्चाई ये है कि मेरे पति को उन कॉन्ट्रैक्टर ने चलाकर मार डाला। मैं नहीं चाहती थी कि अफेयर वाली बात लेकर ये केस कहीं और गुमराह हो जाए। आप एक बात समझ लीजिए इंस्पेक्टर, मेरे पति के मर्डर का इस अफेयर वाली बात से कोई संबंध नहीं है, समझे आप?
देखिए गरिमा जी, हमने जो समझना था समझ लिए, अब आप भी एक बात समझ लें, आपके पति के मौत का कोई कारण है तो वो है उनका पर्सनल अफेयर। अब आस्की में किसने जान दी और किसने जान ली ये हम बहुत जल्द पता कर लेंगे।
आप जो भी बोलना चाहते हैं साफ साफ बोलिए।
साफ साफ तो आपको बोलना था गरिमा जी, लेकिन आप तो चुपचाप बैठी रहीं, मुंह में दही जमाए हुए, जबकि हम किसी और एंगल को पकड़कर उसकी तहकीकात करते रहे। ये केस मर्डर का है कि सुसाइड का, अगर कोई जानता है तो वो आप हैं।
ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि मेरे पति का उस लड़की के साथ अफेयर था, लेकिन मेरे पति उसके लिए, उस लड़की के लिए सुसाइड नहीं कर सकते, बल्कि वो किसी भी कारण के लिए सुसाइड नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर, उनके दो दो बच्चे हैं, 1000 जिम्मेदारियां हैं उन पर।
आपके पति साधना वर्मा से शादी करना चाह रहे थे।
सवाल ही नहीं उठता इंस्पेक्टर, वो हम तीनों को नहीं छोड़ सकते।
उसी शाम राजनगर पुलिस स्टेशन में, कामत सर, किसी ने साधना के पिता अभय वर्मा को फोन किया, बोला साधना मेरठ में है।
और कुछ नहीं बोला, अपना नाम वाम?
नहीं सर, कुछ भी नहीं, अज्ञात कॉलर था।
नंबर ट्रेस किया दयाल?
सर, मेरठ के लोकल पीसीओ से कॉल था।
आखिर ये माजरा क्या है, कौन गेम खेल रहा है? मुझे लगता है कोई साधना को पकड़वाना चाहता है, उसे सामने लाना चाह रहा है।
सर, हमें ये अफेयर और इंश्योरेंस वाली बात ना पता चलती तो शायद ये कॉल आता ही नहीं।
दयाल, ये कॉल आया तो साधना के पिता अभय वर्मा को था, पर दरअसल ये कॉल हमारे लिए था, हमें गुमराह करने के लिए।
दयाल, ये फोन कॉल महज फोन कॉल नहीं है, दरअसल इशारे हैं। मेरठ पुलिस को इन्फॉर्म करो, उनके मदद की जरूरत पड़ेगी। चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया है दयाल, खेलना तो पड़ेगा ही। दयाल, मेरठ चलने की तैयारी करो।
मेरठ का वो रहस्यमय पीसीओ कॉलर सिर्फ साधना वर्मा का पता जानता था, या फिर तपन की मौत का राज भी खोलने वाला था। मेरठ शहर में आई राजनगर की पुलिस टीम को अब एक से एक तगड़े झटके मिलने लगे। दोनों पीसीओ के मालिक ने पुलिस को बताया कि उन्होंने कॉलर पर ध्यान ही नहीं दिया।
कामत सर, इस पीसीओ वाले का भी यही जवाब है कि उसने कॉलर पर ध्यान नहीं दिया।
कोई बात नहीं दयाल, इस पीसीओ के ठीक सामने जो गुडलक होटल है, उसके एक सीसीटीवी का एंगल इसी तरफ है, जरा फुटेज तो निकलवाओ।
कुछ घंटों बाद इंस्पेक्टर कामत और दयाल बेसब्री से सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे थे।
एक मिनट दयाल, ये हमारा बंदा हो सकता है, इसे फ्रीज करो, थोड़ा जूम करो,
इसके टी शर्ट पे कुछ लिखा है, मेरठ टाइम्स। सर, इसी तरह के अखबार गाजियाबाद टाइम्स में तपन बनर्जी काम करता था।
तो दयाल, जरा पता करो ये मेरठ टाइम्स का दफ्तर कहाँ है और ये आदमी है कौन।
कुछ घंटों बाद, कामत सर, मैंने पता लगाया है, सीसीटीवी में दिखने वाला आदमी का नाम तरुण सरकार है और उसने मेरठ टाइम्स अखबार 3 हफ्ते पहले ही ज्वाइन किया है। ये रही उसकी साफ तस्वीर, अखबार के दफ्तर से निकलवाया है।
क्या, 3 हफ्ते पहले, यानी कि तपन बनर्जी की मौत के 1 सप्ताह बाद?
दयाल, जरा गौर से इस तरुण सरकार की फोटो को देखो, सारा माजरा समझ में आ जाएगा। जरा तपन बनर्जी की फोटो निकालना। हाँ, और दोनों को अब ध्यान से देखो, ऐसा नौटंकी बाज आज तक नहीं देखा।
दोपहर के 3 बजे, बैंक कॉलोनी मेरठ। साधना वर्मा।
हाँ जी।
आइए अब गाजियाबाद लौट चले, चलिए आपको आपके घर ले जाने आए हैं।
क्या क्या मतलब है आपका, बात क्या है?
आपके पति का नाम क्या है?
तरुण, तरुण सरकार।
पक्का? लॉक कर दे।
बड़े बदतमीज है आप, मेरे पति बस आने ही वाले होंगे।
उसकी चिंता मत करिए साधना जी, कांस्टेबल दयाल नीचे इंतजार कर रहा है। तीन दिन बाद राजनगर पुलिस स्टेशन में।
मैं अपनी मर्जी से मेरठ गई थी।
मर्जी आपकी, तैयारियां तपन बनर्जी की, अच्छी पार्टनरशिप है।
देखिए देखिए, ये तपन नहीं तरुण है, तरुण सरकार। मैं इनसे तपन के डेथ के बाद मिली थी।
ओ हाँ, आप इनसे तपन के डेथ के बाद मिली, मिलते ही प्यार हो गया, शादी हो गई। आप तो इंस्टेंट नूडल्स को भी मात दे रही है साधना जी। कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन के दूसरे सेल में इंस्पेक्टर कामत मेरठ से गिरफ्तार कर लाए गए तरुण सरकार से पूछताछ कर रहे हैं।
इंस्पेक्टर साहब, ये क्या आपने तपन बनर्जी लगा रखा है? आई एम नॉट तपन बनर्जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आई एम तरुण सरकार, मेरठ टाइम्स का सीनियर रिपोर्टर। झूठ है ये, नो सच है ये।
स्वर्गीय तपन बनर्जी, सच जानने का हक तो हमारा भी है।
हेलो, गरिमा बनर्जी स्पीकिंग।
गरिमा जी, इंस्पेक्टर कामत बोल रहा हूँ, राजनगर चौकी से। केस सॉल्व हो गया।
क्या सच में आपने तपन के कातिलों को पकड़ लिया है?
जी नहीं, हम तपन बनर्जी के कातिलों को ढूंढ नहीं पाए, और जिस शख्स ने अपना कत्ल खुद ही किया हो उसके कातिलों को हम कैसे ढूंढें?
आप फिर से मर्डर को सुसाइड का नाम दे रहे हैं।
नहीं गरिमा जी, ये सुसाइड केस नहीं है, बल्कि पुनर्जन्म का मामला लगता है। मुबारक हो, आपके पति जिंदा हैं, और उनका जन्मदिन मनाने के लिए हम उन्हें मेरठ से राजनगर लेकर आए हैं। आइए आप भी पुलिस स्टेशन में आकर अपनी आंखों से देख लीजिए।
मैं नहीं मानती इस बात को।
हमें भी इस चमत्कार को मानने में थोड़ा वक्त लगा। तो आप आ रही हैं या आपको लाने के लिए पुलिस स्टेशन से किसी को भेजूं? गरिमा और साधना दोनों ने इस बात को कबूल किया था कि पुलिस की हिरासत में जो आदमी था वो तरुण सरकार नहीं बल्कि तपन बनर्जी ही था, जो पूरी दुनिया के लिए कुछ दिन पहले मर चुका था। आखिरकार तपन ने भी अपनी असलियत को कबूल कर लिया। तपन का कबूलनामा एक ऐसे भयंकर और क्रूर प्लान को रोशनी में लाया जो उसने खुद रचा था अपने स्वार्थ के लिए। हाँ तो मिस्टर तपन बनर्जी, कार में जो बुरी तरह जली हुई लाश रखी थी वो लाश किसकी थी?
सर, मैंने साधना और अपने अफेयर को छुपाने की लाख कोशिशें करी पर छुपा नहीं पाया।
गरिमा समझ ही नहीं पा रही थी, पर मेरा साला गरिमा का भाई तमल, वो समझ गया कि मेरे मन में क्या था। मैं डिप्रेशन में चला गया था, मेरे मन में सुसाइड का ख्याल आते, सोचता कि खत्म कर दूं ये सब। इसी उधेर बुन में एक दिन मैं अखबार के दफ्तर जा रहा था कि सेक्टर 12 की ट्रैफिक लाइट पर मैंने एक 34-35 साल के लड़के को देखा। उसे थोड़ी देर तक देखने के बाद मैं समझ गया था कि वो लड़का दिमागी रूप से कमजोर है और वो भटकता हुआ वहां पहुंच गया है।
वाह मिस्टर तपन, तुम्हारे मन में जान देने की नहीं लेने के ख्याल आ रहे थे, तुम सुसाइड नहीं मर्डर करना चाह रहे थे। तुम्हारी मौत का ड्रामा तो झूठा था, लेकिन गाड़ी में जो जली हुई लाश थी वो मौत हकीकत थी। कैसे मारा उसे?
मैंने अपने साले तमल को समझा दिया था कि इंश्योरेंस के 85 लाख रुपए गरिमा दोनों बच्चों और उसके बीच बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। फिर मैंने तमल को उस आदमी के बारे में बताया कि वो आदमी मेंटली ठीक नहीं है, रोज मेरे अखबार के दफ्तर के आसपास ही दिखाई देता है। उसकी हाइट, उसकी बॉडी मुझसे मेल खाती थी। उस दिन उसे मैं खाना खिलाने के बहाने अपनी कार में बिठाया। मेरा साला तमल पहले से ही कार में बैठा था। एक सुनसान सी जगह देखकर मैंने कार रोक दी। तमल और मैंने मिलकर रस्सी की मदद से उसका गला घोंटा और गाड़ी में आग लगा दी। गाड़ी में आग लगाते वक्त मैंने अपना मोबाइल गाड़ी के अंदर रख दिया और अपना जर्नलिस्ट का आईडी कार्ड भी वही रख दिया।
मिस्टर तपन बनर्जी, खोजी पत्रकारिता की आड़ में तुमने बहुत घिनौना षड्यंत्र रचा, पर अखबार में तुम्हारी रिपोर्टिंग को लेकर धमकियां, क्या वाकई में तुम्हें धमकियां मिल रही थी?
नहीं, वो सब झूठ था।
वाह मिस्टर तपन, पहले खोजी पत्रकार होने का नाटक, फिर खुद को धमकियां मिलने का नाटक, और अंत में खुद अपनी ही मौत की नौटंकी। तो मिस्टर खोजी पत्रकार तपन बनर्जी, तुम्हारे मौत का खेल खत्म हुआ। दयाल इस ड्रामे में फरेब था, धोखा था और निर्दयी हत्या भी थी, और इन सब के बीच एक प्रेम कहानी भी थी तपन और साधना की। इस अवैध प्यार की कीमत थी 85 लाख रुपए, जो बतौर इंश्योरेंस गरिमा को मिलने वाले थे। नाटक में लिखा गया अंत ये था कि तपन बनर्जी तरुण सरकार बनके साधना के साथ मेरठ में एक नई जिंदगी बसर करेगा। जानते हो दयाल, तपन ने साधना के पिता को फोन क्यों किया था?
नहीं कामत सर, ये ट्विस्ट तो मैं बिल्कुल नहीं समझा।
दयाल, तपन जब राजनगर टाइम्स में काम कर रहा था तो वो एक ऊंचे ओहदे पर था, सैलरी अच्छी खासी थी, पर जब वो मेरठ में तरुण सरकार बना तो मेरठ टाइम्स अखबार में वो जूनियर पोस्ट पर था और सैलरी काफ़ी कम थी। कम पैसे को लेकर तरुण उर्फ तपन और साधना में झगड़े होने लगे। वह चाहता था कि साधना के घर वाले आए और साधना को अपने साथ ले जाएं। एनीवे दयाल, दिस केस वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड नाउ इट इज क्लोज्ड।
अभी आप सुन रहे थे हिंदी कहानी पॉडकास्ट की मूल रचना कहानी मौत। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारी कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।